Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse Number 34. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहकण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुश्रूणि वक्ष्यामि गीता सुस्थितिमात्मना वक्त्राणि पञ्चजानीह पञ्चाध्यायाननुक्रमा दशोऽध्यायान्भुजांश्चैकम् उदरं दौ पादमम् एवमष्टादशोऽध्यायो वाङ्मयी मूर्ति ईश्वरी।
श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं,
मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवात्सनारीणाम् स्मृतिमेधा धृतिक्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाच नारीणाम् स्मृतिमेधा धृतिक्षमा मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणा स्मृतिमेधा धृतिक्षमा.
शब्दात् मृत्यु यानी मृत्यु, सर्वहरश अर्थात सर्वभक्षी, च भी अहम मैं हूँ, उद्भवः यानी सृष्टि, च भी भविष्यताम भावी जगतों में, कीर्ति अर्थात यश, श्री ऐश्वर्य या सुंदरता, वाक यानी वाणी, च भी नारीणाम यानी स्त्रियों में, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धि, धृति दृढ़ता, क्षमा क्षमा या धैर्य. अनुवाद और तात्पर्य: कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद: भगवान कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ. स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा. श्रीला प्रभुपाद की जय हो. श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है. इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है. यह मृत्यु कृष्ण ही है. जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में सह परिवर्तन होते हैं. वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं. इन सहों परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है. प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभ आरंभ है. यहाँ जिन सात ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा. यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है. यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है. संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है. यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है. केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता बढ़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है. यह दूसरा ऐश्वर्य है. स्थिरता पर विजय पाना, अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है. पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है. श्रील प्रभुपाद की जय हो.
मूकं कुरु तु वाचानं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्।
श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। आज भगवान बहुत ही सुंदर विभूति के विषय में बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं, जिसके द्वारा हम भगवान को हर क्षण स्मरण कर सकें। और आज भगवान एक ऐसी विचित्र विभूति के विषय में बता रहे हैं, जिस जो हर एक व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होती है। और जब हम किसी की वह स्थिति देखें, तो भगवान कहते हैं, उस समय तुम मुझे अवश्य स्मरण किया करो। भगवान कहते हैं मृत्यु, मृत्यु का मतलब होता है वह स्थिति जिसमें एक जीव आत्मा को यह शरीर को छोड़ना होता है, उसको मृत्यु कहा जाता है। और यह मृत्यु जो है वो मनुष्य जीवन की, हर एक जीव की जो है वो एक बहुत बड़ी घटना है। और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मृत्यु एक बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत मतलब दुख की बात मानी जाती है संसार में। हालांकि देखा जाए तो मृत्यु ही जन्म का बीज है। कहीं पर मृत्यु हुई है, कहीं पर अगर जन्म होता है तो सब लोग खुश होते हैं ना कि भाई आज सब लोग बधाई देते हैं कि इसका जन्म हुआ है। लेकिन वास्तव में ये जो जन्म हुआ है वो कहीं न कहीं मृत्यु का संकेत देता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो आज जन्मा है वो कहीं न कहीं मरा है। उसी व्यक्ति के कहीं न कहीं पर मृत्यु का दुख अनुभव किया जा रहा है। और आज यहाँ पर जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर उसके जन्म होने का आनंद लुटा जा रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पर ये दोनों चीजों को खुद बता रहे। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान को एक भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला। जैसे भगवान कहते हैं सर्वहरश, यानी हरण कर लेना। हरण करने वाला मतलब चोरी करने वाला, हर एक चीज को चोरी करने वाला है। भगवान को हरि इसलिए कहते हैं कि वो हर किसी का कुछ सब कुछ चोरी कर देता है। एक बार भगवान को जो देख लेता है, अब जो अगर प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं वे भी भगवान को यही कहते हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां सदुकूल चोरम श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसंतं नवनीतचोरं। ये रहता है विरज में और काम क्या करता है, क्या काम करेगा, माखन चोरी करता है और क्या करता है। बोला बस माखन ही चोरी करता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, ब्रज में क्या माखन की कमी है। बोला नहीं नहीं, खाली माखन थोड़ी चोरी करता है। फिर गोपांगनाना चदुकूल चोरम, ये बड़ा बदमाश है, ये तो गोपियों के वस्त्र भी चोरी करता है। और क्या बताऊं,
लोग तो हीरे चोरी करते हैं, सोना चोरी करते हैं, जवाहरात चोरी करते, धन लूटते हैं। ये तो ऐसा खतरनाक चोर है जो हृदय को निकाल के चोरी करके चला जाता है। बोला, अच्छा किसका हृदय चोरी किया? तो बोले, श्री राधिकाया हृदयस्य चोर। ये तो श्रीमती राधा रानी का हृदय ही चोरी करके ले गया। तो ये तो चोर नहीं, चोरा गगण्यम, ये तो चोरों का सरदार है। और इस चोर के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। ये तो भक्तों का भाव है। और यहाँ पर भगवान क्योंकि अपनी विभूति को बता रहे हैं, वे कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम। एक जीव, एक मनुष्य इस भौतिक जगत में जब से जन्म लेता है तो बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करता है। छोटा बच्चा होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद नौकरी करता है, फिर धन प्राप्त करता है, उसके बाद विवाह होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, घर बनाता है, गाड़ी लेता है, बिजनेस करता है। ये सारी चीजें जो पूरी जीवन में उसने कमाई होती है, एक क्षण में मृत्यु आती है और उसका सब कुछ लुट जाता है। वो तो मृत्यु बन के आ जाती है और अब उसका कुछ नहीं रहता। उसका ज्ञान उससे लूट लिया जाता है, उसका जो यश है इस भौतिक जगत में वो ले लिया जाता है, उसका धन उससे ले लिया जाता है, गाड़ी, मकान, बंगला, यहाँ तक कि उसका शरीर भी उससे ले लिया जाता है, उसके सारे जितने भी संबंधी होते हैं वो छिन जाते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं रहता। एक आत्मा जो इस शरीर में कैद होती है, तब तक वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करती है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है कि ये मृत्यु की घटना ऐसी होती है कि अब जब वो दूसरी जगह पर जन्म होगा ना, तो सबसे पहला तो उसका मनुष्य शरीर उससे छीन लिया गया। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि उसे मनुष्य शरीर मिलेगा। चलो मिल भी गया तो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, यदि वो डॉक्टर बना था, MBBS किया था, IIT की डिग्री प्राप्त की थी, CA किया था, कुछ भी किया था, अब कोई डिग्री उसके पास नहीं है, उसे फिर से A4 APPIL पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने बहुत बहुत धन कमाया था तो मृत्यु होने के बाद कभी ऐसा नहीं हम कह सकते, होने से पहले ही अपने सारे जितने भी पुत्र हैं उनको बोले, देखो मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा एड्रेस मैं तुमको दे देता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और तुम मुझे प्लीज मनी ऑर्डर करते रहना। ऐसा होता है कभी? किसी को पता नहीं होता है कि मृत्यु के पास ये जीव कहाँ जाता है। यदि कोई आपका संबंधी आपको मनी ऑर्डर करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। एड्रेस क्या लिखेगा, क्या उसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। केवल जो हम भक्ति करते हैं ना, जो कृष्ण का नाम लेते हैं, जो आज आप कथा श्रवण कर रहे हो, भगवत गीता को श्रवण कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, केवल वही पूंजी आपके साथ जाएगी। बाकी जो भौतिक आप कमा रहे हो वो सब का सब श्रम एवहि केवलम। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करते हो, धन अर्जित करते हो, घर बार को हर चीज को बहुत अच्छे समय देकर अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से करते हो, तो भी यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो समझो आप अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आएगी और आपका सब कुछ लेके चली जाएगी। ये जो भगवान है वो बहुत बड़े चोर हैं और मृत्यु बनकर आते हैं। जैसे एक पिताजी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बहुत सारा धन देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप इससे बिजनेस करो। फिर बच्चा क्या करता है, उसका बेटा बिजनेस करता है लेकिन पिता को उसका कुछ भी मतलब जो उसका धन कमाता है उसमें से कुछ भी नहीं देता, सारा खुद हड़प कर देता है। हालांकि उसका क्या कर्तव्य है कि जो धन कमाए उससे माता पिता की भी सेवा करे, लेकिन वो सब कुछ अपना समझकर केवल स्वयं ही प्रभुत्व जताना चाहता है। फिर पिताजी क्या करते हैं, मेरे पैसे से मेरा ही सब कुछ धन है और आप उसको लूट रहे हो, आप मुझे नहीं मुझे पहले आपको देना चाहिए ना हर चीज, आप मुझे नहीं दे रहे हो, मेरा ही तो है सब कुछ जो तुम्हारे पास है। तो उसी तरह से ये सब कुछ भगवान का है, हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की संपत्ति है। तो यदि वो संतान जो है जो भी धन कमाता है वो यदि अपने पिता को देता है तो पिता कुछ खुद नहीं करेगा बल्कि वो उसको ही दे देगा, लेकिन यदि वो संतान उस धन का दुरुपयोग कर रहा है तो क्या करेगा, पिता वापस उससे सारी चीजें ले लेगा, है ना, कि भाई मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो उसी तरह भगवान ने जो हमें यश दिया है, नाम दिया है, जीवन दिया है, जो कुछ दिया है वो भगवान की सेवा के लिए हमें यूज करना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, मृत्यु सर्व हरश्चाम, सब कुछ ले लेंगे वापस। भगवान बोलेंगे तुम इसके लायक नहीं हो, मैंने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया, मनुष्य जीवन में तुम्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए था जिससे तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सफल हो। तुम वही पशुओं की तरह आहार निद्रा भाई मैथुन कर रहे हो, अब तुम्हें मैं पशु का जीवन बना दे देता हूँ। तो जैसे जैसे हम कार्य करेंगे भौतिक जगत में उसी के अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलेगा। भगवान बताते हैं 1.5 में कि अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाल में जब मृत्यु आती है यदि जीव को मेरा स्मरण हो गया, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और स्मरण करते हुए यदि उसने यह कलेवर को त्यागा तो क्या होगा, यह प्रयाति समद भावम, वो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को पूरा प्राप्त करेगा। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, तुम कोई भी इसमें संशय नहीं करो, अगर मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास डेफिनेटली आओगे। लेकिन यदि उस समय आपको किसी और का स्मरण हो गया तो भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस चीज को स्मरण करते हुए अपने इस कलेवर को त्यागोगे तम तमे वायति कुंते सदा तद्भाव भावेता, तुम्हें निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये मृत्यु जो है या उस समय डिसीजन लिया जाता है कि अब आप किधर जाओगे, और उस समय डिसीजन किस बात पे किस बेस पर लिया जाता है कि उस समय आप किसको स्मरण करते हो। और दूसरी बात ये कि आप ये फिर सोच सकते हो ना कि अंत समय में फिर मैं भगवान को स्मरण करूंगा, परंतु ऐसा नहीं होगा, वह इतना कठिन समय होता है कि उस समय आपको वही याद आता है जो सारी जीवन आपने याद किया होता है। अगर सारे जीवन आपने भगवान का नाम नहीं लिया, महामंत्र का जप नहीं किया, तो फिर उस समय आपको केवल कष्ट हो रहा होता है और उस कष्ट में भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। इसलिए सारा जीवन हमें एक दिन में कम से कम 16 माला करनी चाहिए, कम से कम। ये जो 16 माला का श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें ये जो एक कोटा दिया है एक दिन का, एक दिन में जितनी सांसें ली जाती है ना उतने नाम आते हैं 16 माला में। तो यदि एक दिन में हम 16 माला जप करते हैं तो फिर ये बहुत बहुत संभव है कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो जाए। ये जो है ना, ये रोज का रोज डोज है, एक इतना अगर हम रोज रोज 16 माला जप करेंगे ना, और जप भी बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। ये हम जो जप करते हैं ना, समझो इतना सिंसियरली करना चाहिए, एक एक शब्द को अच्छे से बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हमारे पूरे जीवन की सफलता इन 16 माला के ऊपर डिपेंड करती है। 99% सक्सेस इन योर डिवोशन सर्विस इज डिपेंड ऑन योर चेंटिंग। ये जो आप जप करते हो ना, हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है। हम तो अभी देख रहे हैं उसने 16 किए हैं, उसने 8 किए हैं, मैंने 2 किए हैं, मैं भी ऐसे कल से ही करूंगा, तो अभी उसका इतना महत्व नहीं लग रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें नाम जप करने का एक संग ऐसा मिला है कि हम नाम जप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाम जप करने में रुचि नहीं रखते। अगर भगवान से कभी प्रार्थना करनी हो ना, तो यही प्रार्थना करना कि नाम जप में हमारी रुचि बढ़ती रहे, क्योंकि जितना हम नाम जप करने में रुचि बढ़ाएंगे ना, उतना ही इस बात की गारंटी है कि हमें अंत समय में भगवान का नाम याद आएगा। और अगर अंत समय में भगवान का नाम याद आ गया ना, तो समझो आपका जीवन सक्सेस है। वरना भले कुछ भी प्राप्त कर लो, आप इस जीवन में भले कितना ही बड़ा धन दौलत गाड़ी बंगलो ऐश आराम हर चीज प्राप्त कर लो, लेकिन यदि अंत समय में भगवान का नाम याद नहीं आया, तो समझो आप फेल हो जाओगे। इस मनुष्य जीवन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है, अंते नारायण स्मृति। अंत में यदि भगवान की याद आ जाएगी, भगवान का नाम मुख से निकल आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस हो गई सक्सेस, हो गया आपका कल्याण। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है अपने जीवन को सफल करने का। इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ अपने नाम जप को प्रतिदिन और उत्साह के साथ करना चाहिए, ताकि हम अंत समय की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि बाकी सब भगवान स्वयं कह रहे हैं आज, मृत्यु सर्वहरश्चाम। इस भौतिक जगत में ये जो नाम है वो आध्यात्मिक वस्तु है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये आध्यात्मिक है। बाकी जो कुछ भी भौतिक है वो हम कभी भी यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्वहरश्चाम, सर्व का मतलब होता है A to Z, हर एक वस्तु आपसे छीन ली जाएगी उस समय, सिवाय नाम जप के और सिवाय जो आपने भगवान की भक्ति में समय बिताया ना, सिर्फ उसके अतिरिक्त और सारा का सारा आपसे जो भी अर्जित किया मेहनत से, वो सब का सब छीन लिया जाएगा। तो अकलमंद व्यक्ति क्या है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा जो कि स्थायी रूप पर, मतलब हमेशा उसके साथ रहेगा, जो समाप्त नहीं होगा, और वो केवल भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, जो हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। बल्कि भगवान तो यहाँ पर कहते हैं 2.40 में, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो भगवान की भक्ति है ना, इसमें कभी कोई नुकसान नहीं है, कभी कोई घाटा नहीं। अगर आपने स्वल्पम बहुत ही थोड़ा सा भी किया होगा ना, तो वो भी आपको त्रायते महतो भयात, ये जो भयानक खतरा है ना मृत्यु का, उससे आपको बचा लेगा। और अगर आपने पूरी ईमानदारी से जप नहीं किया है, लेकिन किया है, अगर आप कर रहे हो फिर भी, तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कोई लॉस है। भगवान ने स्वयं कहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ऐसे लोक में जाओगे जहां पर पुण्य आत्मा रहते हैं, और वहां पर शाश्वती समा बहुत बहुत समय तक आपको आनंद करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद श्रीमान श्रीमताम ये है योगो भ्रष्टो भी जायते। 6.41 भगवान कहते हैं, फिर आप इतनी अच्छी जगह पर धनी परिवार में जन्म लोगे, जहाँ पर आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं, हर एक वस्तु स्वतः आपको प्राप्त होगी। तो भक्ति जो है वो शुभदा, श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं, यदि किसी वस्तु से आपका कल्याण हो सकता है ना, तो वो केवल और केवल
भगवान का नाम और भगवान की कथा श्रवण करना, भक्तों का संग करना, जो भगवान की भक्ति है ना, उससे केवल आपका कल्याण हो सकता है। और इसलिए भगवान कहते हैं, वैसे तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु बनकर आता हूँ और सब कुछ छीन कर ले जाता हूँ, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखता, कहाँ करूंगा, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। उद्भवश्च भविष्यताम, पुनः सारा लौटा देता हूँ। भविष्यता मतलब आगे, फिर भावी जगत में उद्भवश्य पर सृष्टि भी करता हूँ, और जो जो तुमने कार्य किए होते हैं उनके अनुसार वो सब तुम्हें वापस लौटाता हूँ। जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे उसके अनुसार जो जो हमें प्राप्त होना होगा, तो भगवान कहते हैं वो भी मैं देता हूँ। मतलब उद्भवश्य भविष्यता, एक तरफ तो मृत्यु बनकर सब कुछ हरण कर लेता हूँ जो कुछ प्राप्त किया होता है, और दूसरी तरफ तुम्हारी दोबारा से सृष्टि करता हूँ, और सृष्टि करने के बाद वापस से तुम्हारे जो कर्मों के अनुसार प्राप्त होना होता है वो सब तुम्हें दे देता हूँ। यानी प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है, और जो दूसरा जन्म आपको मिला है तो उसके अनुसार आप दोबारा से कार्य करोगे, और फिर जो कार्य करोगे यानी कि जैसा जैसा बीज बोते जाओगे मैं वैसा वैसा फल आपको देता जाऊंगा। तो भक्तों, यहाँ पर भगवान का कोई दोष नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है। कभी कभी लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतना दुख दिया, लेकिन भगवान तो उस वर्षा की तरह है कि जो एक फलदार, जो फल वाला वृक्ष है उसके ऊपर भी पड़ती है, और जो कांटों वाला वृक्ष है उसके ऊपर भी पड़ रही है। लेकिन अगर फल वाला जो वृक्ष है वो बढ़ता है या कांटों वाला वृक्ष बढ़ता है तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। अब आपने वृक्ष लगाया ही कांटों वाला है तो उसमें फल वाला कैसे उगेंगे, तो हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते कि भगवान आपने मुझे क्यों कांटों वाला वृक्ष दिया, मुझे फल वाला वृक्ष क्यों नहीं दिया। भगवान ने तो पूर्ण करुणा से वर्षा की है, अब ये हमारी अपनी इच्छा है कि हम फल वाला वृक्ष चाहते हैं या कांटों वाला वृक्ष। तो जैसा जैसा बोते जा रहे हैं इस जन्म में तो अगले जन्म में वो काटते जाएंगे। इसे भगवान कहते हैं उद्भवश्य भविष्यताम। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है बहुत ही सुंदर है, उसमें भगवान कहते हैं कीर्ति श्री वाक्च नारायणम, यानी स्त्रियों में, नारी कहते हैं स्त्रियों में, और भगवान यहाँ पर सात क्वालिटीज बताते हैं, सात ऐश्वर्यों का उल्लेख है। सबसे पहले है कीर्ति, कीर्ति यानी यश। स्त्रियों का यश जो है, जैसे अभी कन्याएं होती हैं, छोटी होती हैं, और यश फैल रहा होता है उनका, सब लोग मतलब हृदय से इच्छा होती है कि यह स्त्री हमारे घर पे, ये कन्या हमारे घर पे है, और जो जिस घर में बहू बन के जाती है तो भी उसका यश फैल रहा होता है कि मतलब जैसे संस्कार होते हैं उनके अनुसार। और उसके बाद है श्री, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, सुंदरता, लक्ष्मी। तो स्त्रियों की सुंदरता बहुत प्रचलित है ना, कोई भी मतलब इस तरह से कहीं पर भी समाज में यदि सुंदरता की बात आती है तो डायरेक्ट से मन जो है वो स्त्री की तरफ जाता है। हालांकि पुरुष भी होते हैं लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि ये पुरुष सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है, नहीं, स्त्रियों के लिए बहुत बोला जाता है कि कितनी सुंदर लगती है। तो ये सुंदरता का गुण जो है स्त्रियों के लिए, ये सारे गुण जो है यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्त्रियों में, सॉरी भगवान कहते हैं स्त्रियों में ये सारे गुण हैं और वो गुण मेरी पहचान है। और आगे कहते हैं स्मृति यानी याददाश्त, स्मरण शक्ति। अभी स्त्रियां क्या करती हैं, बहुत सारी जो जिस कुल में होती हैं, बड़ी स्त्रियां होती हैं, उनको सारा याद होता है कि इस दिन हमें ये करना है, अमावस्या के दिन ये करना है, द्वादशी के दिन ये करना है, आज इसकी पूजा करनी है, आज ये दिन आ रहा है, आज दिवाली के दिन ये करना है, उसके बाद चांद आ रहा है। मतलब हर एक जो रस्में होती है ना, जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो उसकी सारी तैयारियां करना, वो करना। स्मृति होती है उसके अंदर कि किस तरह से जो कुल की रीति रस्में हैं वो सब स्त्रियां याद रखती हैं और उसके अनुसार जो है वो करती हैं, और इस तरह से पुरुषों को भी गाइड करती हैं कि आज आपको ये करना है ये नहीं करना है, और मतलब आज ब्राह्मण को प्रसाद खिलाना है घर पे, आज बड़ा दिन है, ये सब स्त्रियां बताती ना। और यही चीजें जो हैं वो आगे हमारे, क्योंकि पुण्य एकत्रित होते ना तो आगे हमारे कल्याणकारी बनती है हमारे लिए। पुरुषों को तो ज्यादातर अपना बिजनेस संभालना होता है, उसके लिए ही सोच रहे होते हैं, ये सारी रीतों रस्मों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो स्त्री होती है वो उनको बताती है कि भाई अभी ऐसे करना है, भगवान को प्रसाद अर्पण कर लिया है, अभी ये खाना है आपको, ये करना, इस तरह से बताते ना। तो ये स्मृति जो है वो स्त्रियों के अंदर एक गुण है। और दूसरा है मेधा। मेधा मतलब बुद्धि। अभी बुद्धि के बारे में मैं आपको बताऊं कि वैसे तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के अंदर बुद्धि नहीं है, है ना, ऐसे बोला जाता है ना। हम अक्सर सुनते हैं कि स्त्रियों के अंदर बुद्धि इतनी नहीं है जितनी पुरुषों के अंदर। लेकिन ये चाणक्य पंडित का जो है ना एक कोट है कि भाई स्त्रियों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन यदि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती तो भगवान ऐसे क्यों बोलते कि स्त्रियों में मैं बुद्धि हूं। अब बुद्धि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान तो अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। विभूतियां मतलब जो ग्रेटेस्ट है, जो हाईएस्ट है। अब पुरुषों के अंदर बुद्धि हो ऐसे क्यों नहीं बोला, पुरुषों के अंदर भी तो बुद्धि होती है, लेकिन भगवान फिर भी बोल रहे हैं स्त्रियों के अंदर बुद्धि हो। यहां पर कुछ लोग जैसे इस बात को नहीं भी मानते, बहुत बार ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं स्त्रियों के अंदर तो बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर हम तत्व की दृष्टि से भी देखें तो जैसे अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो स्त्रियां तो भौतिक दृष्टि में बहुत सारी है ना बुद्धिमान होती हैं। जैसे आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्त्रियां बहुत टॉप कर रही हैं, तो इसका मतलब है भौतिक दृष्टि से तो उनके पास बुद्धि है। और इसके अतिरिक्त अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा तो आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा है, और आत्मा तो सबके अंदर इक्वल है, सबके साथ सबकी वही होती है, उसमें कभी भी आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। तो फिर भेद कहाँ है, भेद आत्मा और शरीर के संग में है। स्त्रियों की बुद्धि में शारीरिक धारणा बहुत होती है। क्यों बोला जाता है उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी शारीरिक धारणा में, अभी स्त्रियां जो होती हैं वो अपनी संतान के अंदर बहुत ज्यादा आसक्त होती हैं, उनके विषय में बहुत, इनका विवाह करना है, ये करना है, और उनसे बहुत ज्यादा, क्योंकि माँ बनती है, स्त्री माँ बनती है, और जब माँ, उनके अंदर भावना बहुत ज्यादा होती है। वो तत्व ज्ञान के स्तर पर ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, ये स्त्रियों को बहुत मुश्किल लगता है, ये चीज उसको समझ में नहीं आती है, बहुत उनको कठिन लगता है। बहुत उनके अंदर भावना होती है, अपने प्रेम, अपने जो संबंधी हैं उनके साथ उनका बहुत ही आकर्षण होता है, बहुत आसक्ति होती है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा अटैच होती है उनके अंदर। तो फिर है ना डिटैचमेंट उसके लिए बहुत, ये जो अनासक्ति है ना वो प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन स्त्रियां, यहां पर भगवान कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर मेधा यानी बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि में हूं, यानी कि अगर स्त्रियों की इस भावना को संसार से निकालकर भगवान के अंदर लगा दिया जाए ना, तो फिर स्त्रियां जो हैं वो कृष्ण से इतना तीव्रता से प्रेम कर सकती हैं, मतलब ये जो आसक्ति, जो क्योंकि बहुत समय तक जड़ वस्तुओं में, इन भौतिक रिश्तों में, संबंधों में लगी हुई है ना, तो ये अगर उनको सही गाइडलाइन मिल जाए और ये अपनी आसक्ति को भगवान के अंदर डाइवर्ट कर ले, तो फिर उनकी बुद्धि जितनी और किसी के अंदर बुद्धि नहीं, बहुत ही हृदय के साथ दृढ़ता, आगे कहते हैं धृति, दृढ़ता के साथ अपने संकल्प को पूरा करेंगी और किसी तरह से कृष्ण को प्राप्त करके, मतलब उनके पास भावना बहुत है, बस उनको अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो फिर उनके लिए ये सारे उनके गुण जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मनुष्य जीवन को सफल करने की राह पर लेकर जाएंगे। और आगे कहते हैं धृति के बाद क्षमा। हृदय इतना बड़ा होता है एक स्त्री का कि वो बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर सकती है। जैसे स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, उसकी संतान। लेकिन हम देखते हैं महाभारत में जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला और उस अश्वत्थामा को अर्जुन कीट करके लेके आया, फिर बोला जैसे तुम बोलो ऐसे सजा दूंगा मैं इसे। पता है द्रौपदी ने कहा अगर इसको मार भी डालेंगे ना अर्जुन तो भी मेरे पुत्र वापस तो नहीं आएंगे, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और मैं ये नहीं चाहती आज जो दुख मैं भोग रही हूँ वो आपकी गुरु माता को भोगना पड़े, इसलिए इसे छोड़ दो। यानी ये स्त्री के अंदर इतना बड़ा हृदय है स्त्री का कि वो बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं स्त्रियों के अंदर ये सारे गुण हैं और उनको विकसित करना चाहिए। कीर्ति श्री वाक, वाक मतलब बहुत ही सुंदरता से चतुराई के साथ बात करना। जैसे आप बात भी कर लो और मतलब कहने वाली बात भी हो जाए और किसी का हृदय भी ना दुखे, वाक चतुराई, नारी नाम और स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सारे गुण स्त्रियों में मैं हूँ। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ये बात इस तरह से बताई है, ये मतलब इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। स्त्रियों की ये सारी क्वालिटीज भगवान कहते हैं मैं है, मैं हूँ। और यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वे स्त्रीवाचक हैं। स्त्रीवाचक मतलब जैसे कीर्ति मेरी कीर्ति, ऐसे मतलब ये सारे फेमिनिन वर्ड्स हैं, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, तो ये सारी जो है स्त्रीवाचक हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ हो कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है, वो फिर उसका यश बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इन सारे गुणों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है तो अपने अंदर इन गुणों को विकसित करना, भले हम पुरुष हैं या स्त्रियां हैं तो अपने अंदर ये गुणों को विकसित करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। और स्मरण के विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण कर रखता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाता है। यानी कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो उसको मेधा या बुद्धि कहा जाता है। और यदि मतलब अस्थिरता पर विजय प्राप्त में स्थिरता, यानी कि कभी किसी के अंदर इच्छा किधर कोई इच्छा कभी कोई इच्छा, तो यदि स्थिर नहीं होता मन एक जगह वन पॉइंटेड नहीं होता है तो उसको अस्थिर मन कहते हैं। लेकिन अस्थिरता पर जब विजय प्राप्त हो जाती है स्थिर हो जाते हैं दृढ़ता आ जाती है तो उसको दृढ़ति कहते हैं। और पूर्णतया योग्य होकर भी यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। भले हमारे अंदर योग्यता है हम उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन विनम्रता को अपना कर यदि हम उसको दंड नहीं देते हैं और संभाव देखते हैं सुख और दुख में तो इसको क्षमा कहा जाता है। भगवान कहते हैं ये सारे गुण जहां भी दिखें तो समझो कि ये मेरे गुण है। यदि किसी को यशस्वी है कोई अच्छा स्मरण करता है और अच्छे से बात करता है, वाक उसकी अच्छी होती है सुंदर होता है, किसी के अंदर बुद्धि होती है, किसी के अंदर क्षमा का गुण है जो आपको आकर्षित करती है, ये सारी ऐश्वर्य मेरे हैं, तो जहां भी दिखें आप उस समय मुझे स्मरण किया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।